नई कविता का आत्मसंघर्ष। जब कभी कोई नई काव्य प्रवृत्ति अथवा साहित्य प्रवृत्ति अवतरित होती है, कला के मूल तत्वों के संबंध में, सिद्धांत के बारे में बहस शुरू हो जाती है। यदि इस विचार विनिमय को वास्तववादी होना है, तो उसे एक साथ दो काम करने होंगे। एक तो अपने युग विशेष की प्रवृत्तियों को समझ लेना होगा, दूसरे नई काव्य प्रवृत्ति के स्वरूप को हृदयंगम करना होगा। नई काव्य प्रवृत्ति अभी तक पंडितों, आचार्य, प्रवरों और आलोचक वर्ण्यों द्वारा हृदयंगम नहीं हो सकी हैं, किंतु यह चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात यह है कि नई काव्य प्रवृत्ति के क्षेत्र के भीतर से कोई आलोचना अभी नहीं उठी है जो उस प्रवृत्ति की सीमाएं बताए और उसकी विस्तृत समीक्षा करे। कला की वस्तु और रूप का प्रश्न आज ही क्यों उठ खड़ा हुआ, वह भी इतने जोर से क्यों? संवेदनशील कवि हृदय को उसके आसपास को वास्तविकता के मार्मिक पक्ष गहरी चुनौती देते हैं। यह चुनौती दो प्रकार की होती है, एक तत्व संबंधी, दूसरी रूप संबंधी। आज के कवि के हृदय में तनाव भी है, घिराव भी है, किंतु कवि हृदय फैलाना चाहता है, आत्मविस्तार चाहता है। फैलने की इस मनोवृत्ति के सक्रिय होते ही उसे मानव वास्तविकता के मूल मार्मिक पक्ष दिखाई देने लगते हैं, किंतु कहना चाहिए कि इस मार्मिक पक्षों का संवेदनात्मक आकलन करने की सारी तत्परता होते हुए भी अभिव्यक्ति लंगड़ी जाती है। आज की काव्य प्रवृत्ति की मनोवैज्ञानिक धारा यदि विशुद्ध आत्मा परक भाव धारा होती है, अर्थात अनायास प्रवाहित होने वाले स्वच्छंद भावों का वह प्रवाह होता है, तो दिक्कत का सामना न करना पड़ता। किंतु वह कविता संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना के तीव्र मानसिक प्रतिक्रिया घातों को प्रकट करना चाहती है। वह सर्वत्र कहाँ तक सफल है, यह एक अलग प्रश्न है। ऐसी स्थिति में उसे न केवल अनुभूति पक्ष के वरन वस्तु पक्ष के और उससे संबंधित परिज्ञान पक्ष के विकास की अपेक्षा है। यह सवाल या इससे संबंधित प्रश्न कविजनों के मन में उठते रहते हैं, किंतु ज्ञान पक्ष संवेदना से हटकर काव्य उपयोगी नहीं रहेगा। यह तथ्य स्वीकृति करने पर भी इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आज की नई प्रगल्भ विकास के लिए कवि की मूलभूत शक्ति में विलक्षण विशेषण प्रवृत्ति चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कविता पुराने काव्य युगों से कहीं अधिक, बहुत अधिक अपने परिवेश के साथ द्वंद्व स्थिति में प्रस्तुत है। इसीलिए उसके भीतर तनाव का वातावरण, परिस्थिति की पेचीदगी से बाहर निकल सकने की हालात में मन जिस प्रकार अंतर्मुख होकर निपीड़ित हो उठता है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज की कविता में घिराव का वातावरण भी है। अतएव आज की कविता किसी न किसी प्रकार से अपने परिवेश के साथ द्वंद्व स्थिति में उपस्थित होती है, जिसके फलस्वरूप यह आग्रह दुनिवार हो उठता है कि कवि हृदय द्वंद्वों का भी अध्याय करे, अर्थात वास्तविकता में बौद्धिक दृष्टि द्वारा अंतः प्रवेश करे और ऐसी विश्व दृष्टि का विकास करे जिससे व्यापक जीवन जगत की व्याख्या हो सके तथा अंतर जीवन के भीतर के आंदोलन आर पार फैली हुई वास्तविकता के संदर्भ से व्याख्यात, विश्लेषित और मूल्यांकित हो। तभी हम आसपास फैली हुई मानव वास्तविकता के मार्मिक पक्षों का उद्घाटन चित्रण कर सकेंगे। माना कि यह उद्घाटन चित्रण मात्र विवेचनात्मक बौद्धिक दृष्टि से ही नहीं होगा, किंतु उस बौद्धिक प्रतिभा के फलस्वरूप संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन अधिक पुष्ट होंगे अनुभूति को ज्ञान प्रेरित जीवनानुभव प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार व्यक्तित्व अधिक सक्षम हो सकेगा, किंतु केवल इतना ही काफी नहीं है। वैविध्यपूर्ण, स्पंदनशील, आसपास फैले हुए मानव जगत के मार्मिक पक्षों के वेदनात्मक चित्रण के लिए अभिव्यक्ति संपदा भी चाहिए। केवल अत्यंतिक तीव्र संवेदनात्मक पूर्ण मानसिक प्रतिक्रिया करने वाली काव्य शैली को अधिक लचीली, अधिक सक्षम और संपन्न बनाना होगा, जिससे कि वह एक ओर कवि हृदय की अत्यंत सूक्ष्म संवेदनाएं मूर्तिमान कर सकें, तो दूसरी ओर वास्तव जीवन जगत की लहर लहर को हृदयमंग कर उसे समुचित वाणी दे सकें। पुराने शास्त्रीय शब्दावली में कहा जाए तो उसे भाव पक्ष के साथ विभाव पक्ष का चित्रण करना होगा। सच बात तो यह है कि आज के लिए एक साथ तीन क्षेत्रों में संघर्ष करना है। उसके संघर्ष का त्रिविधिक स्वरूप यह होना चाहिए। तत्व के लिए संघर्ष, अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए संघर्ष, दृष्टि विकास का संघर्ष। प्रथम का संबंध मानव वास्तविकता के अधिकतम सक्षम उद्घाटन अवलोकन से है, दूसरे का संबंध चित्रण सामर्थ्य से है और तीसरे का संबंध थियरी से है, विश्व दृष्टि के विकास से है, वास्तविकताओं की व्याख्या से है। यह त्रिविधिक संघर्ष है। कला वस्तु तत्व अंतर्गत व्यवस्था का ही एक भाग है। वे ऐसे अंतः तत्व है जो बाहर धक्के से या उन धक्कों से संचय से उद्वेलित अर्थात तरंगायित मानसिक दृष्टि के सम्मुख उद्घाटित जीवन मूल्यों तथा पूर्वोत्तर अनुभवों से आलोकित तथा अभिव्यक्ति के लिए आतुर हो उठते हैं। तरंगायित होकर जब अंतर तत्व मानसिक दृष्टि के सम्मुख उपस्थित हो उठते हैं, तभी उनमें रूप आ जाता है, अर्थात कल्पना बिंब या स्वर या प्रवाह से वे स्वीकृत हो उठते हैं। कल्पना का कार्य यहीं से शुरू हो जाता है। बोध पक्ष अर्थात ज्ञान वृत्ति भी यहाँ सक्रिय हो उठती है। यह उद्घाटन क्षण है, यह कला का प्रथम क्षण है। इसके अनंतर मानसिक दृष्टि जो इस तत्व रूप को देख रही थी, उसके रस में निमग्न सी होने लगती है। साथ ही बोध पक्ष यानी ज्ञान वृत्ति की सक्रियता के फलस्वरूप वह तटस्थ भी हो जाती है, वह अंतः प्रवेश करने लगती है, साथ ही वह बाहर से पर्यवलोकन भी करती है। फलतः एक ओर रस का प्रवाह या भाव प्रवाह अन्य संभावों और समरूप अनुभवों को उस तत्वों में मिला देता है, तो दूसरी ओर हृदय में संचित जीवन मूल्यों की अर्थात हमारे अंतःकरण में स्थित आदर्शात्मक सत्ता की भी एक धारा इस तत्व में मिलने लगती है। कल्पना उद्दीप्त होकर संवेदना से आलुप्त उस तत्व को समरूप अनुभवों और जीवन मूल्यों से संश्लेषित करती हुई एक संश्लिष्ट जीवन विचित्रशाला उपस्थित कर देती है। यह कला का दूसरा क्षण है कि जिसमें हमारे वेदनात्मक हेतु और संवेदनात्मक अभिप्राय किसी व्यापक मार्मिक जीवन महत्व से न्यस्त हो जाते हैं और हमारे लिए वह आत्मतत्व इतना अधिक महत्वपूर्ण मालूम होता है कि हम उसकी अभिव्यक्ति के लिए छटपटाते हैं। इस छटपटाहट में अब हम शब्द, रंग तथा स्वर में अभिव्यक्ति करने लगते हैं, तब कला का तीसरा क्षण शुरू हो जाता है। अभिव्यक्त के साधन अर्थात भाषा हमारे लिए सामाजिक है। इससे उसके शब्द संयोग भाव परंपरा और ज्ञान परंपरा से पूर्ण है। अतएव हम में अपने हृदयगत तत्वों को उनमें मौलिक रूप, रंग और भार में स्थापित और प्रकट करने के लिए नए शब्द संयोग बनाने या लाने पड़ते हैं। शास्त्रीय शब्दावली में कहें तो हमें नवीन वक्रोक्तियों और भंगिमाओं का सहारा लेना पड़ता है, साथ ही कल्पना शक्ति का भी नवीन रूप बिंबों का विधान करती है, जिससे मन तत्व अपने मौलिक रूप रंग में प्रकट हो सके। अभिव्यक्ति का संघर्ष दीर्घ होता है, कला का यह तीसरा क्षण दीर्घ होता है। उस संघर्ष में अभिव्यक्ति के स्तर तक आते जाते हमारे मनोमय तत्व रूप बदलने लगते हैं। होता यह है कि उस संघर्ष के दौरान में भाषा के भीतर अवस्थित ज्ञान परंपरा और भाव परंपरा के कारण जो पहले से ही शब्द संयोग बने हुए हैं, उन शब्द संयोगों के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े हुए जो अर्थानुसंग हैं, उन अर्थानुसंगों के प्रभाव में आकर समशील समरूप अर्थानुसंगों को आत्मसात कर मनोमय रूप तत्व अपने को और पुष्ट करते हैं। फलतः वे इस हद तक बदल भी जाते हैं जब वे अपने खास साजग और अपनी खास काट की अभिव्यक्ति पा लेते हैं, तब उनके तत्व और रूप पहले से बहुत कुछ बदले हुए होते हैं। सामाजिक संपदा होने के कारण भाषा मनोमय रूप तत्वों को उनमें प्रकट होने के दौरान में घटा बढ़ा देती हैं और अनजाने ढंग से उनमें नए रूप तत्व ला देती है। साथ ही यह अभिव्यक्ति संघर्ष भाषा को कुछ बदल देता है, उसे नवीन शब्द संयोग, नवीन अर्थवत्ता और नई भंगिमाएं और व्यंजनाएं देता है। इस प्रकार कलाकार भाषा का भी निर्माण करता है। अभिव्यक्ति समाप्त होते ही, उसके संघर्ष का अंत होते ही कला का तीसरा क्षण भी समाप्त होता है। अब कलाकृति सामने आ जाती है। अब उसमें केवल इधर उधर कुछ शब्दों या स्वरों के फेर फार के सिवाय कुछ बाकी नहीं रह जाता। यदि उपयुक्त स्थापनाएं सही हैं तो उससे कई निष्कर्ष निकलते हैं। सृजन प्रक्रिया के दौरान में काव्य के मनोमय तत्व और रूप स्थिर नहीं होते। वे मनोमय तत्व रूप तब तक अपने को विकसित और संशोधित करते जाते हैं, अपने को पुष्ट और प्रकाशान्वित करते जाते हैं, जब तक कि अभिव्यक्ति में संपूर्णता आकर कला का तीसरा क्षण समाप्त न हो जाए। इसका अर्थ यह है, जो महानुभाव आत्मोद्घाटन को ही काव्य और उद्देश्य समझते हैं, आत्म प्रकटीकरण प्रधान मानते हैं, वे सज्जन आत्म प्रकटीकरण की प्रक्रिया हृदयगम नहीं रह सके हैं। कवि अपने अंतर में व्याप्त जीवन जगत को प्रकट करता है, वह किसी भाव उद्देश्य को प्रकट करता है, किंतु यह भाव उद्देश्य निरा व्यक्तिगत नहीं होता। सच तो यह है कि मनुष्य जब काव्य में अपने आप को प्रकट करता है, तब वह केवल आत्म प्रस्थापना ही नहीं करता, वरन वह आत्म औचित्य की स्थापना करता है। आत्म औचित्य की स्थापना के द्वारा ही वह आत्म प्रस्थापना करता है। फलतः इसी औचित्य स्थापना की भावना से प्रेरित होकर वह अपने भीतर जो कुछ उसका अपना विशिष्ट और उस सामान्य में जिसे वह सामान्य समझता है, इतना अधिक मिला देता है कि उस सामान्य के प्रवाह में बहकर उसका विशिष्ट आमूल्य बदल जाता है। और जब वह विशिष्ट सामान्य में घोल मिलकर रूपांतरित हो जाता है, तब कवि आहाद और प्रकाश का अनुभव करता है और उसे लगता है कि उसका विशिष्ट जो अब विशिष्ट नहीं रहा, बहुत ही मार्मिक महत्व प्रकाश मार्मिक महत्व किरणें विकसित कर रहा है। यह सामान्य क्या है? वे जीवन मूल्य हैं, वे जीवन मूल दृष्टियां हैं जो कवि ने अपने बाह्य विस्तृत जीवन में पाई हैं। दूसरे शब्दों में, उसके अंतर में व्याप्त ये जीवन मूल्य और यह जीवन दृष्टि बाह्य जीवन जगत का ही मनोवैज्ञानिक रूप है। सृजन प्रक्रिया के दौरान में विलक्षण बात घटित होती है। एक तो यह कि विशिष्ट जब सामान्य घुलता है तब उस विशिष्ट के कारण कवि की आत्मलीन दशा का जो संवेदनात्मक पुंज है वह तो स्थायी रहता है, किंतु उस बद्धता के घेरे की दीवारें टूट जाती हैं। इस प्रकार कवि मन संवेदनात्मक पुंज धारण करते हुए जो पुंज उसकी आत्मलीन स्थिति में उद्भूत हुए थे, सामान्य भूमि पर आकर जीवन मूल्य और जीवन दृष्टियों से समन्वित होने से अपने को जन संवेदना पुंजों से ऊपर उठा हुआ अर्थात तटस्थ महसूस करता है, तथा वे संवेदना पुंज जीवन मूल्यों और जीवन दृष्टियों से तथा पूर्वगत अनुभवों से मिलकर अपने को व्यापक महत्व और प्रकाश से युक्त कर लेते हैं। अतएव उन संवेदना पुंजों में दर्शन को एक अद्वितीय आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार दर्शक मन अपने को एकदम तटस्थ तो दूसरी ओर एकदम रसमग्न अनुभव करता है। विशिष्ट को सामान्य बनाने के हेतु कवि मन वेदनात्मक उद्देश्य से प्रेरित होकर निरंतर भाव संशोधन और भाव संपादन करता है। यह कवि की आंतरिक प्रक्रिया का अंग है। सच तो यह है कि कविताएं एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। अभिव्यक्ति प्राप्त होने पर भाव पक्ष का समाजीकरण हो जाता है। सृजन प्रक्रिया के अंतर्गत विशिष्ट को सामान्य बनाने की यह क्रिया तभी से शुरू हो जाती है जब कवि कला के प्रथम क्षण में अंतर नेत्रों से उठ उस तत्व को देखने लगता है कि जो तत्व उन अंतर नेत्रों के सामने तरंगायित और उद्घाटित हो उठता है। आगे चलकर समरूप अनुभवों से मिलते हुए वह मनोमय तत्व तब जीवन मूल्यों और जीवन दृष्टियों से अपना संगम करता है, तब वह और भी सामान्य हो उठता है। प्रश्न यह है कि वे जीवन मूल्य और जीवन दृष्टियाँ किसकी हैं? केवल व्यक्ति की तो वे नहीं हो सकती। वह सामान्य भूमि किसकी है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। यह प्रश्न हमें समाज शास्त्रीय आलोचना की ओर ले जाता है। आगे चलकर जबकि कवि अपने मनोमय तत्व रूप को बाह्य अभिव्यक्ति के सांचे में ढालने लगता है, या जब वह बाह्य अभिव्यक्ति को अंतर अभिव्यक्ति के साइज की काट की रग की बनाने लगता है, तब उसकी आँखों के सामने जो सौंदर्य प्रतिमान होता है वह सौंदर्य प्रतिमान किस सौंदर्य अभिरुचि ने किस वर्ग की सौंदर्य रुचि ने उत्पन्न किया है? यह प्रश्न स्वाभाविक हो उठता है। सौंदर्य रुचि यदि मात्र व्यक्ति जन्य होती तो बात अलग थी, किंतु सौंदर्य अभिरुचि का वह प्रेम मात्र व्यक्ति जन्य नहीं है। अतएव यह प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है कि उस वर्ग ने सौंदर्य अभिरुचि के उस प्रेम का विकास किया तो क्यों किया? उसका औचित्य क्या है? सीमाएं क्या है? आदि आदि। ध्यान रहे कि सौंदर्य अभिरुचि अपनी रक्षा के लिए सेंसरों का भी विकास करती है। प्रश्न यह है कि सेंसर किन मन तत्व के विरुद्ध हैं, क्यों हैं, और इसका विश्लेषण आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए आज की नवी कविता में कर्कश विद्रोह स्वर अथवा गली क्रिचों की धूल और मिट्टी की व्यंग तस्वीर अथवा क्रांतिकारी चंडता सौंदर्यजनक में समझी जाती। भद्रवर्ग की बैठक में सुनाई गई भावों वाली कविताओं के प्रति प्रतिष्ठित महारथियों ने अविश्वास भिरुचि और भर्राग्य की प्रकट किया। उन्होंने बार बार यह कहा कि उन्हें प्रतीत नहीं होता कि वह स्वर वस्तुतः आत्मनुभूति है, अर्थात उन्होंने उस पर अविश्वास किया। दूसरे शब्दों में नई कविता खास काट की खास शैली की होने के अलावा कुछ विशेष विषयों और मन तत्वों तक ही सीमित रहनी चाहिए। स्पष्ट है कि उनकी सौंदर्य अभिरुचि एक विशेष वर्ग की है, जिस विशेष वर्ग ने विशेष वर्ग स्थिति में ही उस विशेष सौंदर्य अभिरुचि को अंगीकार किया है, और उस अभिरुचि के अंतर्गत सेंसर काफ़ी सक्रिय है। उस उच्च मध्यवर्गीय सौंदर्य अभिरुचि के अतीन हो निम्न मध्यवर्गीय कविजन जाने अनजाने उस फ्रेम के कारण सेंसर लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने मानव स्पंदन और मर्मानुभव काटते रहते हैं। निसंदेह सौंदर्य अभिरुचि और उसके अधीन सेंसर के विश्लेषण के सिलसिले में हमें उस सौंदर्य अभिरुचि और सेंसर की सामान्य भूमि अर्थात वर्गीय भूमि तक पहुँचना ही पड़ता है। सच तो यह है कि काव्य की विशिष्ट और सामान्य भूमियों को पूर्णतः समझने का अभी प्रयास नहीं किया गया है, अर्थात उन उपायों में सर्वांगीण पूर्णता नहीं आई है। जो हो तो यह सही है कि कविता में कवि का आत्मोद्घाटन उतना विश्वसनीय नहीं है जितना कि उसकी सामान्य भूमि। सृजन प्रक्रिया के उपयुक्त विश्लेषण से जो दूसरा निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि यदि कलाकार के तीनों क्षण पूर्ण न हुए या उनमें शिथिलता आई तो कविता सुंदर नहीं होगी, उसके तत्वों में निखार नहीं आएगा। जो कविताएं दुर्बोध हो जाती हैं उन कविताओं में मन रसमग्नता के साथ साथ ही पर्यालोचन पूर्ण तटस्थता का निर्वाह नहीं कर पाता। तटस्थता के पूर्ण निर्वाह के अभाव का प्रमुख कारण यह है कि वह अपनी वेदनाओं को जीवन मूल्य और जीवन दृष्टियों के प्रकाश में नहीं देख रहा है, कि वह अभी भी व्यक्तिवध और आत्मग्रस्त है। वे दृष्टियाँ और वे कुछ मूल्य उसके संबंधित तत्वों का अंग नहीं बनी है, उनका समाजीकरण नहीं हुआ है। मैं कला के दूसरे क्षण की बात कर रहा हूँ। फलतः कवि अपने आत्मलीन भावों को तो देख पाता है, किंतु उनको पूर्वगत अनुभवों से प्रकाशित और जीवन मूल्यों से समन्वित करने वाले जीवन दृष्टि से एकात्मय नहीं कर पा रहा है। इस सामान्य भूमि पर खड़े होकर वह तटस्थ हो सकता है जब तक उनकी वेदना व्यापक मार्मिक अर्थ नहीं देती, तब तक कला का दूसरा क्षण सिद्ध संपन्न ही नहीं हो सकता। संक्षेप में, वह उस सामान्य भूमि और अपनी विशिष्ट अनुभूति को समन्वित और एकात्म नहीं कर पाता, फलतः वह मात्र आत्मग्रस्त होकर रह जाता है। इसके विपरीत जिन कवियों के पास अपने संवेदन शिथिल हैं वे शीघ्र ही तटस्थ हो जाते हैं, अपने से वे जल्दी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, किंतु मनोमय तत्व में संवेदनात्मक आनंद प्राप्त होने की दशा क्षीण होने के कारण वे उस मनोमय तत्व के संवेदन पुंजों को ही ग्रहण नहीं कर पाते। फलतः उनकी कविता रिक्त रह जाती है, शुष्क हो जाती है। मनोमय तत्व के संवेदन पुंजों को प्राप्त करना कवि का आद्य प्राथमिकता कर्तव्य है, वे उसे ही भूल जाते हैं। सच तो यह है कि कवि सृजन प्रक्रिया के दौरान निराला जीवित जीता है। उस जीवन को उसे ईमानदारी से आग्रह पूर्वक ध्यानशील होकर जीना चाहिए, नहीं तो बीच बीच में सांस उखड़ जाएगी और उसके फलस्वरूप काव्य में खोट पैदा होगी। सृजन प्रक्रिया के उपयुक्त विश्लेषण से एक तीसरा निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि कवि की संवेदना कल्पना की संश्लेषण शक्ति और बुद्धि की विश्लेषण शक्ति इन तीनों में से कोई भी कमजोर हुई तो मनोमय तत्व रूप अपि अपनी सही सही ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसके साथ अभिव्यक्त सामर्थ्य को भी जोड़िए। अभिव्यक्ति संपदा की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष आवश्यक है, यह प्रयत्न साध्य है और अभ्यावस है। हमारे जन्म काल से ही शुरू होने वाला हमारा जो जीवन है वह बाह्य जीवन जगत के अभ्यंतिकरण द्वारा ही संपन्न और विकसित होता है। यदि यह अभ्यंतिकरण न हो तो हम कृमि पानी का जीव हाइड्रा बन जाएंगे। हमारी भाव संपदा, ज्ञान संपदा, अनुभव समृद्धि उस अंतर तत्व व्यवस्था का ही अभिन्न अंग है कि जो अंतर तत्व व्यवस्था हमारे बाह्य जीवन जगत के अभ्यंतकारी करण से प्राप्त की है। हम मरते दम तक जीवन जगत का अभ्यंतिकरण करते जाते हैं, किंतु साथ ही बातचीत, बहस, लेखन, भाषण, साहित्य और काव्य द्वारा हम निरंतर स्वयं का वाहीकरण एक निरंतर चक्र है। यह अभ्यंतिकरण तथा वाहीकरण मात्र मन जन्य नहीं वरना कर्म जन्य भी है। जो भी हो, कला अभ्यंतर के बाह्यकरण का एक रूप है। बातचीत बहस भाषण लेखन चित्रकला काव्य साहित्य आदि द्वारा हम बाह्य जीवन जगत के साथ या तो सामंजस्य उत्पन्न करते हैं या उस सामंजस्य के अनुकूल प्रस्तुत होते हैं। काव्य भी या तो बाह्य जीवन जगत के साथ सामंजस्य में या उसके अनुकूल उपस्थित होता है अथवा उसके साथ द्वंद्व रूप में प्रस्तुत होता है। अथवा काव्य प्रवृत्ति बातचीत भाषण लेखन के समान ही एक स्तर या क्षेत्र में सामंजस्य और दूसरे स्तर या क्षेत्र में द्वंद्व को लेकर प्रस्तुत होती है। संक्षेप में अभ्यंतर या बाह्यकरण विश्वव्यापी सामंजस्य या द्वंद्व अथवा दोनों के निम्न रूप में उपस्थित होता है, इस नियम का अपवाद नहीं है। आज की कविता में उक्त सामंजस्य से अधिक द्वंद्व ही है, इसके लिए उसके भीतर तनाव या घिराव का वातावरण है। आज का पदाभास गद मुख्यतः यह बात व्यक्त करता है कि इन में सुमधुर लयात्मक किंतु गणितीय इंद्रिय छंदों का स्थान नहीं। संक्षेप में इस पार्वभूमि को देखकर ही वर्तमान कविता की विवेचना होनी चाहिए, किंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम इस द्वंद्व को पूर्णतः समझें और तदनुसार अनुभव समृद्धि बढ़ाएं। मेरा अपना मानना है कि हमारे साहित्य चिंतन या कलात्मक दृष्टि का विकास तभी होगा जब हम वास्तविक जीवन में व्यापक अथवा विविध जीवानुभवों से संपन्न होंगे तथा हम विक्षुब्ध उत्पीड़ित मानवता के आदर्शों से एकात्मक होंगे। इसके बिना तत्व समृद्धि और तत्व परिष्कार की समस्या अधूरी ही रह जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यह विश्वास है कि नई काव्य प्रवृत्तियाँ चाहे वे गीत रूप में ही क्यों ना आए उक्त कार्य कर सकेंगी। वास्तविक जीवन जगत के मार्मिक पक्षों को प्रकट करने के लिए, दूसरे शब्दों में हमारे अभ्यंतर में व्याप्त वास्तविक जीवन जगत के मार्मिक पक्षों की अभिव्यक्ति के लिए हमें कुछ खास खतरों से सावधान रहना होगा। एक खतरा है जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि का। काव्य प्रवृत्ति के क्षेत्र में कुछ महान व्यक्ति अपनी वर्गीय अभिरुचि के फलस्वरूप सौंदर्य का जो प्रतिमान हमारे सामने रखते हैं उसमें जब तक व्यापक संशोधन नहीं होगा तब तक हम अपने ही जीवन अनुभवों का पूर्ण और प्रभावशाली चित्र उपस्थित नहीं कर सकते। जो काव्यात्मक व्यक्तित्व एक बंद संदूक क्लोज्ड सिस्टम बनाता है, तुम नहीं व्याप्त सकते। तुम में जो व्यापक है उसी को निभाओ। वह जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि ही प्रस्तुत कर रहा है। इसी तरह की जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि के फलस्वरूप ही कुछ साहित्यिक समाजशास्त्री अपने ढर्रे के बाहर के क्षेत्र में प्रचलित नई काव्य समृद्धि में विद्रूपता के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते। यदि हमें वैविध्यपूर्ण परस्पर द्वंद्वमय मानव जीवन के अपने अंतर में व्यापित मार्मिक पक्षों का वास्तविक प्रभावशाली चित्रण करना है तो हमें जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि और उसके सेंसर त्यागने तथा अनवरत रूप से अपने ढांचे और फ्रेमों में संशोधन करते रहना होगा। मनुष्य जीवन का कोई अंग ऐसा नहीं जो साहित्य अभिरुचि के अनुपयुक्त हो। जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि एक विशेष शैली को दूसरी विशेष शैली के विरुद्ध स्थापित करती है। गीतों का नई कविता से कोई विरोध नहीं, न नई कविता को उसके विरुद्ध अपने को प्रतिष्ठित करना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि जीवन में नए तत्व आए, न कि किसी काव्य शैली की धारा की समाप्ति हो। किंतु जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि जबरदस्ती का विरोध पैदा कर देती है। वह स्वयं अपनी धारा का विकास भी कुंठित करेगी, साथ ही पूरे साहित्य का भी। नई कविता के विभिन्न कवियों की अपनी अपनी विशेष शैलियाँ हैं। इन शैलियों का विकास अनवरत है। आगे चलकर जब ये पढ़तर होंगी, नई कविता विशेष रूप से ज्योतिमान होकर सामने आएंगी। साथ ही नई कविता में स्वयं कई भावधाराएं हैं, एक भावधारा नहीं। इनमें से एक भावधारा में प्रगतिशील तत्व पर्याप्त है, उनकी समीक्षा होना बहुत आवश्यक है। मेरा अपना मत है, आगे चलकर नई कविता में प्रगतिशील तत्व और भी बढ़ते जाएंगे और वह मानवता के अधिकाधिक समीप जाएगी। समाप्त।